हरे कृष्णा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 4 के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर का नाम था दिव्य ज्ञान, और आज हम लोग 5th चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता का 4th चैप्टर, जिसमें दिव्य ज्ञान बताया गया, वहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई, वो ये थी कि दिव्य ज्ञान परंपरा में ग्रहण करना चाहिए। बिना परंपरा में ज्ञान ग्रहण करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अगर परंपरा में ज्ञान ग्रहण नहीं किया जाएगा तो फिर वो ऑथराइज्ड नहीं है। तो इसलिए परंपरा में ज्ञान ग्रहण करना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कई सारे लोग आजकल के समय में पूछते हैं कि क्या आप हमें भगवान दिखा सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन शास्त्रों में एक शब्द यूज होता है दर्शन। दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी। तो फिलॉसफी जो है वो सुन के जानी जाती है। जब कोई फिलॉसफी को सुनता है तब उसको देखने के चक्षु प्राप्त होते हैं, फिर वो भगवान को देख सकता है डे टू डे एक्टिविटीज में। हम लोग ऐसे अगर देखने का प्रयास करेंगे तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण नहीं हैं, इसलिए कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। जैसे एक बार क्या हुआ, जब मैं 12th में था तभी हमारे क्लास का एक लड़का वो केमिकल लैब में गया, और वहाँ पर उसने देखा कि एक बोतल में लिक्विड रखा हुआ था और पड़ोस में जो है कुछ नींबू पड़े हुए थे। तो इस लड़के ने सोचा कि शायद ये लेमन जूस रखा हुआ है इस बोतल में, और मैं बहुत प्यासा भी हूँ, चलो इसको पी लेता हूँ। तब तक क्या हुआ, वो लेबोरेटरी में जो रहता है इंचार्ज वो वहाँ पे आ गया। तो उसने पूछा, ये तो नींबू पानी है ना, मैं पीने जा रहा हूँ इसको। उसने बोला, अरे नींबू पानी नहीं है, ये एसिड है, अगर तुमने इसको पी लिया होता अभी तो तुम्हारा हरिबोल हो गया होता। वो तो मैंने यहाँ पे भी खाना खाया है, तो मैंने नींबू खाए थे, वो नींबू के छिलके भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो उसने कहा, अरे देखो नींबू यहाँ पे पड़ा हुआ था तो मुझे लगा कि ये नींबू पानी और मैं अभी इसको पी लेता। बोला, नहीं मैं तो अभी हाथ धुलने के लिए गया था, हाँ इतनी देर में तुम आए और ऐसी बात कर रहे हो। तो क्या हुआ, ये जो लड़का था इसने देखा कि नींबू पड़ोस में पड़ा हुआ है, बोतल पड़ोस में रखी हुई है, तो इसके मन ने अपने आप इसको ऐड कर लिया कि ये जो बोतल में है ये क्या होगा, नींबू पानी होगा। ये मन ने ऐसा बोल दिया। तो ठीक वैसे ही जैसे हमारे मन ने ये गलत कंक्लूजन दिया, ऐसे हमारी आंखें भी हैं वो भी गलत कंक्लूजन दे देती हैं। तो कभी कभी हम उनके द्वारा ठग लिए जाते हैं। इसलिए हमें अपनी आंखों पर विश्वास ना करके किस पे विश्वास करना चाहिए, कान पे विश्वास करना चाहिए। कान से जो हम ऑथराइज्ड पर्सन से सुनते हैं उस ज्ञान को सुन के हम रियल ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ऑथराइज्ड सोर्स से सुनना चाहिए, गुरु से सुनना चाहिए। तो कोई कहेगा, जब हम में त्रुटियां हो सकती हैं, हम में गलतियां हो सकती हैं, तो गुरु जी में भी गलतियां हो सकती हैं। हाँ हो सकती हैं, लेकिन चूंकि गुरु परंपरा से ज्ञान को ग्रहण करते हैं, और वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है, वो भगवान कृष्ण से डायरेक्ट आ रहा है, इसलिए भगवान खुद ही कहते हैं, मैंने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी के बाद नारद जी को मिला, नारद जी के बाद व्यास देव को मिला। इस प्रकार ये परंपरा से ज्ञान आने के कारण ये ज्ञान जो है ये सॉलिड है, ये ऑथराइज्ड है। तो अभी इसलिए हमें इस ज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए, सुनकर देखने का प्रयास करना चाहिए, देखकर देखना नहीं, सुनकर देखने का प्रयास करना चाहिए। तो कानों से देखने का प्रयास करना चाहिए, इसका अर्थ ये है। और इस पथ को बोला जाता है अवरोह पथ। अवरोह पथ मतलब ऊपर से ज्ञान नीचे की तरफ आता है। दो तरीके का होता है, एक आरोह पथ होता है, एक अवरोह पथ होता है। अवरोह मतलब किसी ने, गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, शिष्य गुरु बना, उसने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, ये शिष्य गुरु बना, उसने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, इस तरीके जो ज्ञान आता है उसको अवरोह बोलते हैं। लेकिन अपनी तरफ से जानने का प्रयास करने वाला जो ज्ञान है उसको आरोह पथ बोलते हैं। तो हम लोग अवरोह पथ को स्वीकार करते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में भी दिया था, कोई बच्चा अपनी कोई बच्चा अपने पिता को जानना चाहता है कि उसके पिताजी कौन है, तो अवरोह पथ क्या है, वो अपनी माता के पास जाए और माता से पूछे, माता उसको 100% श्योरिटी के साथ बता देगी कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। लेकिन अगर वो आरोह पथ यानी अपनी तरफ से जानने का प्रयास करेगा तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही जो वेद हैं वो हमारी माँ के समान हैं, और कृष्ण जो है हमारे पिता हैं। तो वेद क्या बोलते हैं, वेद कहते हैं अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। जो कृष्ण हैं वो सारे कारणों के कारण हैं। और साथ साथ में वेदों में खास करके भगवद गीता में लिखा है, भगवान अर्जुन को ये जो ज्ञान भगवद गीता का दे रहे हैं उसका कारण उन्हें बताते हैं, कहते हैं कि भक्तो असीमे सखा चेती रहस्यम हेतुद्युत्तमम। ये सीक्रेट है, सीक्रेट नॉलेज है, रहस्य है ये, फिर भी मैं तुमको दे रहा हूं। उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो। अगर कोई भक्त और सखा नहीं होगा तो भगवान को उस तरीके से समझ नहीं पाएगा जिस तरीके से भगवान हमको समझाना चाहते हैं, और वो भगवान के विपरीत सोचने का प्रयास करेगा। हम लोग भी कभी कभी जब भी भगवान के बारे में कुछ सुनते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम भगवान के भक्त नहीं हैं पूर्ण रूप से, भगवान से हमारा प्रेम नहीं है। अगर भगवान से हमारा प्रेम होगा तो हम उनकी सारी लीलाओं पर विश्वास ऑटोमेटिकली कर लेंगे। तो भगवान कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया था और परंपरा के द्वारा ये ज्ञान जो है अन्य अन्य राजाओं को मिला, और अभी वो परंपरा जो है वो ब्रोकन हो गई, वो भी टूट गई है, इसीलिए मैं ज्ञान फिर से तुमको दे रहा हूं। फिर इस प्रकार से भगवान कृष्ण आगे बताना शुरू करते हैं अपनी दिव्यता के बारे में, और वो बताते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सजाम्यहम। और उसके बाद पुनः वो बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म क्या है वो दिव्य है। और एवं योगेति तत्त्वतः, जो इसको जान लेता है इसी तरीके से हाँ वो भी क्या होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान बताते हैं भगवान का जन्म और भगवान के कर्म दिव्य हैं, वो हमारी तरह नहीं है। हमारे हम जैसे कर्मों के बंधन में यहाँ पे कार्य करते हैं, भगवान वैसे नहीं है। तो अगर कोई इस बात को जान लेता है कि हमारा जन्म और कर्म दिव्य है तो वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाता है। तो भगवान आगे बोलते हैं, कहते हैं मूर्ख जो लोग होते हैं वो मुझे नहीं जान पाते, हालांकि मैंने अपने भक्तों को अपना रूप दिखाया है, मैंने यशोदा मैया को अपने मुख में सारे ब्रह्मांडों का दर्शन कराया है, मैंने अर्जुन को भी विराट रूप भगवद गीता में दिखाया है, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे नहीं समझ पाते। मेरा स्वरूप कैसा है? मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है, एक सामान्य व्यक्ति की भांति नहीं है। और जो मेरे स्वरूप के बारे में जान जाता है, मैं सत चित और आनंद से बना हुआ हूँ। सत मतलब होता है हमेशा रहने वाला, चित मतलब पूर्ण ज्ञान वाला, और आनंद मतलब हमेशा आनंद से भरा हुआ। ये अगर कोई जान लेता है तो उसको भी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो अभी कोई पूछ सकता है कि आप बोल रहे हैं जन्म कर्म के बारे में जानना भगवान के, अगर उसको कोई जान लेगा तो वो भी मुक्त हो जाता है। ये जन्म कर्म के बारे में क्या जानना क्या है? तीन चीजें ध्यान रखिए जाननी है। पहला, भगवान का जो शरीर है, यानी कि उसको भगवान का शरीर नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं भगवान का स्वरूप। तो जो भगवान का स्वरूप है वो हम लोगों की तरह, हम लोगों के शरीर की तरह नहीं है। जैसे हम लोगों का शरीर हड्डी मांस और नसें इन सबसे बना हुआ है, भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। उनके शरीर में न तो हड्डियां हैं न तो ब्लड है, बल्कि समझिए कि जिस तत्व की आत्मा है, भगवान का पूरा शरीर उसी तत्व का बना हुआ है, और उस तत्व का नाम है सच्चित आनंद। तो भगवान सच्चिदानंद है हमारा जो शरीर, पहली चीज। और दूसरा, हमारे जो शरीर है वो पांच महाभूत से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। और हम लोग अपने कर्मों का रिएक्शन जो है वो भोग रहे हैं। हमने कुछ कर्म किए हुए हैं पास्ट में, उसके अकॉर्डिंग हमको ये शरीर मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग को सुख और दुख हमारे जीवन में मिल रहे हैं, और हम भगवान के दास हैं। ये दो चीजें। और तीसरी, अगर हम भगवान के जो लीलाएं हैं उनसे अटैच हो जाएंगे तो हमारी इच्छा हो जाएगी कि हम भगवान की सेवा करें, और भगवान की सेवा अगर हमारे करने की इच्छा हो गई और हमने उसमें अगर परफेक्शन प्राप्त कर लिया तो 100% श्योर है कि हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इस जीवन के बाद हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, आत्मा जो है वो भगवान के धाम में चली जाएगी। तो इस तरीके से भगवान आगे बताते हैं, कहते हैं कि सारे रास्ते जो है वो भगवान के पास नहीं आते हैं। कोई कहेगा नहीं हम किसी भी रास्ते से जाएंगे, सारे रास्ते एक जगह जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप वापी में हैं, आप बॉम्बे की ट्रेन पकड़ेंगे तो बॉम्बे जाएंगे, अगर आप बड़ौदरा की ट्रेन पकड़ेंगे तो बड़ौदरा जाएंगे। ऐसा नहीं कह सकते नहीं मैं बॉम्बे की ट्रेन पकड़ूंगा और बड़ौदरा पहुंच जाऊंगा, सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं। नहीं, सारे रास्ते अलग अलग हैं। तो अगर कुछ कोई कुछ और नहीं करता है, केवल भगवान के नाम जप करता है, भगवान का प्रसाद खाता है, यही सब कुछ। तो कई बार सुनने में आता है कि जब किसी के यहाँ कोई व्यक्ति मर जाता है, देहांत हो जाता है, तो बोलते हैं वो भगवत धाम चला गया, भगवान के धाम चला गया। नहीं, भगवत धाम जाना इतना किसी के लिए भी इजी नहीं है। हालांकि प्रोसेस सरल है लेकिन इतनी इजी नहीं है। भगवान बोलते हैं कि अगर मेरे जन्म कर्म के बारे में कोई जानता है तो भगवत धाम जा सकता है। तो भगवान आगे बोलते हैं, कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् हम, जो जिस भावना से मेरे शरण में आता है मैं भी उसके साथ वैसा ही रिएक्ट करता हूँ, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है। अभी कोई व्यक्ति अगर गुस्सा होकर आता है तो सामने वाला व्यक्ति भी गुस्सा हो जाता है, तो वैसे ही भगवान का भी नेचर है। भगवान के शरण जो जिस भाव से ग्रहण करता है भगवान भी उससे वैसा ही रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो अभी कोई भगवान से अगर कुछ मांगता है तो भगवान उसको नहीं देते हैं कभी कभी, क्योंकि भौतिक जो चीजें हैं अगर वो व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, भौतिक इच्छाएं जो लोगों की होती हैं उनसे अगर भौतिक चीजें प्राप्त हो जाती हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की भक्ति करना बंद कर देता है। तो इसलिए भगवान क्या चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि पहले ये व्यक्ति शुद्ध हो जाए। एक बार ये व्यक्ति शुद्ध हो जाए उसके बाद जो है ना, उसके बाद उसको वो सारी चीजें दी जा सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, एक लड़का है, उस लड़के को टाइफाइड हो गया है। टाइफाइड हो गया तो उसको बताया गया आपको कोई भी तेल का चीज नहीं खानी है, ऑयली आइटम कोई भी नहीं खाने हैं। तो ऐसा करके माता, जो उसकी माँ थी, उसने घर पे बनाया, कुछ ऐसा आइटम्स बनाए, लेकिन माँ ने कहा नहीं बेटा तुम पहले ठीक हो जाओ फिर तुम्हें खाने को मिलेगा। लेकिन ये बेटा जो है खाना चाहता है, तो क्या करता है, माँ उसकी कहीं चली जाती है तो अपनी बहन से वो बोलता है प्लीज मुझे खाने को दे दो। तो उसकी बहन जो कबोर्ड में रखा होता है उसको खोल के, लॉक को खोल के वो उसको दे देती है, और इस प्रकार ये लड़का जो है खा लेता है। खाने के बाद क्या होता है, ये बेहोश हो जाता है। अब माँ आती है, वो पूछती है क्या हुआ, तो बहन उसको पूरी बात बताती है, कहती है ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ जो है खाने को देना नहीं चाहती थी, माँ ये चाहती थी कि टाइफाइड जो उसको है वो सही हो जाए, उसके बाद उसको खाने को दिया जाएगा, पहले वो बीमारी से सही होना जरूरी है। तो ठीक वैसे ही हम लोग भी संसार में रहते हुए बीमार हैं, हम लोगों की भौतिक इच्छाएं बहुत हमको सताती हैं, ये मिल जाए ये मिल जाए, इनका कोई और छोर नहीं है। आप देखिए कोई भी इच्छा ले लीजिए, मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदता है तो वो सोचता है चलो मेरे पास टू व्हीलर आ जाए, थोड़े दिनों बाद इच्छा हो जाती कि फोर व्हीलर आ जाए, थोड़े दिनों बाद इच्छा आती और अच्छी वाली फोर व्हीलर आ जाए, और अच्छी वाली फोर व्हीलर मर्सिडीज आ जाए, बीएमडब्ल्यू आ जाए, और उसमें भी खत्म नहीं होगी, वो भी आ जाएंगे ना, तब भी इच्छाएं खत्म होने वाली नहीं है। तो अभी हम लोग ये बद्ध हैं, बद्ध अवस्था में हैं। तो अगर हम भोग्य वस्तु को भगवान से मांगेंगे या किसी देवी देवता से मांगेंगे तो हम और बंधते हुए चले जाएंगे, जैसे कि रावण, कंस, भस्मासुर, इन सब ने क्या किया, भौतिक चीजों को मांगा। ये रावण ने शिव जी को प्रसन्न किया, हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, भक्ति ना मांग के उन्होंने क्या किया, भौतिक चीजों को मांगा, और वो और फंसते चले गए। तो भगवान भी भौतिक चीजों को देते हैं, भगवान खुद को भी दे देते हैं लोगों को, लेकिन वो पहले चाहते हैं कि हम शुद्ध हो जाएं, हमारी शुद्धता के बाद हमको वो प्रोवाइड करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों से, भौतिक स्थिति से ऊपर आ जाता है तब भगवान उसको वो चीजें प्रदान करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज वो 5 साल के थे और वो राज्य करने की इच्छा से, उनकी इच्छा थी कि मेरे पिताजी से भी बड़ा राज्य मुझे प्राप्त हो, इस ऐसे राज्य चाहते थे वो, और उन्होंने भगवान की भक्ति करनी शुरू किया। तो जब भगवान की भक्ति कर लिया, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान आए, तो वो ध्रुव महाराज ने जब भगवान का दर्शन किया तो उन्होंने बोला अरे मैं तो साधारण सा कांच के टुकड़े की खोज में आया था और आपके दर्शन ने तो मुझे जो है डायमंड दे दिया, अभी मुझे नहीं राज्य नहीं चाहिए। तो भगवान देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी इस व्यक्ति को अगर मैं राज्य दूंगा भी तो भी ये राज्य में फंसेगा नहीं, ये अनासक्त होकर राज्य करेगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं अभी तुमको राज्य करना पड़ेगा, और 36,000 साल तक ध्रुव महाराज जो है राज्य करते हैं। तो भगवान पहले क्या करते हैं, हमें शुद्ध कर देते हैं, उसके बाद हमको कोई भी चीज भौतिक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार की बात है, एक डाकू था, एक चोर था कह सकते हैं, वो डाकू भगत करके उसका नाम था। तो ये जो है पुलिस से भागते 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 एक मंदिर में घुस गया, इस्कॉन मंदिर में घुस गया। मंदिर में पहुंचा तो वहां पे उसने सोचा कि अगर मंदिर में पहुंच जाऊंगा तो पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाएगी। तो मंदिर में वो भक्तों के बीच में वहां पे कथा चल रही थी और वो कथा में बैठ गया। उसने देखा कि सब लोग तिलक लगाए हुए हैं, कंठी पहने हुए हैं, तो उसने पूछा कि मुझे भी ये कंठी मिल जाएगी क्या, मुझे भी तिलक मिल जाएगा क्या। तो भक्तों ने कहा मिल जाएगा, उन्होंने तुरंत ही जो है उनको वो तिलक और कंठी दे दिया। अब कथा जो है भगवान कृष्ण के बारे में चल रही थी, बहुत मनोहर कथा चल रही थी, और ये जो कथाकार थे वो भगवान के बारे में बता रहे थे कि भगवान किस तरीके से सुबह सुबह उठते हैं और यशोदा मैया उनको बहुत सुंदर तरीके से तैयार करती हैं, उनके गले में सोने के हार पहनाती हैं, हाथों में कंगन, पैरों में पाजेब पहनाते हैं, और भगवान उसके बाद गाय चराने के लिए जो है अपने ग्वाल वालों के साथ निकल जाते हैं। अब तो ये लड़का, ये जो डाकू था, ये सोचने लगा, अरे वाह, ये आदमी, ये बच्चा रहता कहाँ है, इसको अगर मैं पालूं तो इसका सारा गहना मैं ले लूंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। तो उसने प्रश्न पूछा, जो कथाकार से उनसे प्रश्न पूछा कि ये कितने का होगा, अगर ये सोना जितना वो पहनता है उसकी कीमत क्या होगी। तो कथाकार ने कहा, हंसने लगे कथाकार और बोले कि कम से कम 20-25 लाख का तो होगा ही। अब तो ये और ज्यादा जो है इच्छा हो गई उसकी, चलो कृष्ण से मिलना है। तो उसने पूछा, ये कहाँ मिलेगा लड़का। तो उन्होंने बताया कि ये तो वृंदावन में मिलेगा। और वृंदावन कहाँ है, बोला मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में पड़ता है, आप मथुरा जाइए और वहां पे मथुरा में, वृंदावन में, यमुना जी के किनारे ये गाय चराता हुआ मिलेगा। अभी कथाकार तो कथा कर रहे थे और ये तो सीरियस था बिल्कुल। ये पहुंच गया, उसने ये भी पूछा कि वो दिखाई कैसा देता है। तो कथाकार ने बताया कि वो थोड़ा ब्लूइश है और छोटा सा है और कई सारे बच्चों के साथ खेल रहा होगा, गाय होंगी चारों तरफ, यमुना के किनारे मिलेगा। ऐसा करते करते उस डाकू के अंदर इंटेंस डिजायर हो गई कृष्ण से मिलने की। तो वो पहुंच गया और वहां पे उसने कृष्ण का दर्शन किया। कृष्ण जो है सामने खड़े थे और ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ, और इसने देखा सच में भगवान बहुत सारे गहने पहने हुए हैं। उसने सोचा, वो तो कथाकार तो बोल रहा था 20 लाख, मुझे तो लग रहा है 50 लाख का होगा इसके पास गहना, इतने बड़े बड़े जो है गहने पहने हुए हैं इसने, भारी भारी गहने पहने हुए हैं। तो उसने क्या किया, एक केला लिया केवल, एक केला लेके वो गया कृष्ण के पास और बोला, ये केला मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो जैसे ही उसने भगवान को इस तरीके से केला अर्पण किया, भगवान तो इतने सरल हैं, इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से कि भगवान पूतना जो कि जहर पिलाने आई थी, भगवान ने उसको भी, जहर भी पी लिया था। तो ये व्यक्ति तो कुछ अच्छा दे रहा था, भगवान ने उसको भी एक्सेप्ट किया। और जैसे ही भगवान ने उसके जो है केले को एक्सेप्ट किया, इस व्यक्ति ने क्या किया, भगवान के गले में हाथ डाला उनका नेकलेस निकालने के लिए, उनका हार निकालने के लिए। और जैसे ही भगवान का टच उसको हुआ, भगवान का शरीर से उसको संपर्क हुआ, तुरंत ये सब भूल गया। और इसी बीच में वो पहले वो भगवान से बोला कि मुझे तुम अपना हार दे दो। तो भगवान ने कहा, मैं हार क्यों दे दूं, मैं मेरी माँ को क्या बताऊंगा। तो उसने बोला, नहीं दोगे तो मैं निकाल लेता हूँ। और ऐसा करके उसने गले में हाथ डाला और जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, वो तो सब भूल गया, शॉक्ड रह गया। और भगवान ने कहा, लो ये कंगन भी ले लो, ये हार भी ले लो, सब ले लो। हाँ, लेकिन ये चोर कहने लगा, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ, मैं अभी यहाँ से कहीं भी जाना नहीं चाहता हूँ, अभी मैंने आपको प्राप्त कर लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे विशेषता ये देखने वाली है, भगवान को प्राप्त कर लेना मतलब हमारी भौतिक इच्छाएं सारी बहुत छोटी हैं, बहुत तुच्छ हैं, भगवान को प्राप्त कर लेना मतलब बहुत कुछ है। एक और स्टोरी के द्वारा समझते हैं। एक बार एक राजा ने घोषणा किया कि कोई भी मेरे महल में आके जिस चीज को छुएगा वो चीज उसकी हो जाएगी। तो अगले दिन महल के आगे बहुत भीड़ लग गई और जैसे गेट खुला तो किसी ने राजा के घोड़ों को छुआ, किसी ने राजा का जो गहने रखे हुए थे उनको छुआ, किसी ने कुछ। इतने में एक लड़का आया और उसने राजा को छू लिया। तो जैसे ही उस बच्चे ने राजा को छुआ, राजा की जितनी भी संपत्ति थी वो सारी की सारी उस लड़के की हो गई। तो ठीक वैसे ही भगवान, अभी हम क्या करते हैं, हम अपनी इच्छाएं, अपनी तुष्टि के लिए कुछ भौतिक इच्छाएं करते हैं, और वो भौतिक इच्छाएं कुछ नहीं है भगवान को प्राप्त करने के सामने। भगवान डायमंड है, डायमंड भी कुछ नहीं होता एक्चुअली, भगवान उससे भी परे हैं। अगर हमें वो प्राप्त हो जाते हैं तो हमें और किसी चीज की कुछ भी जरूरत नहीं। लेकिन विशेष बात यह है कि भगवान ऐसे कुछ भी देते नहीं हैं, जब तक भगवान उस व्यक्ति को शुद्ध नहीं कर देते तब तक नहीं देते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे एक पिता है और एक दुकानदार है, एक बच्चे के पास 100 रुपए का नोट है और दुकानदार के पास जाता है, बोलता है मुझे 10 सिगरेट दे दो। तो दुकानदार को कुछ पड़ा नहीं है, वो दे देता है सिगरेट। लेकिन वही बच्चा अगर अपने पिता से सिगरेट मांगता है, बोलता है ये मेरे 100 रुपए ले लीजिए, मुझे सिगरेट दे दीजिए, तो पिताजी 100 का नोट भी अपनी जेब में रख लेंगे और एक झापड़ भी उसको लगा देंगे, बोलेंगे ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो ऐसे देवता जो है, देवताओं को पड़ा नहीं है, कि देवता उस दुकानदार के समान है जो उसको उनको पढ़ा नहीं है कि क्या इसका इसका अच्छा होगा कि बुरा होगा, लेकिन भगवान तब तक नहीं देते हैं जब तक वो देख नहीं लेते हैं कि यह शुद्ध हो गया, जब शुद्ध हो जाता है तब दे देते हैं। तो अगर हम लोग अपने कर्मों का बंधन खत्म करना चाहते हैं तो हमको जानना चाहिए कि भगवान जो है वो कर्मों के द्वारा कभी नहीं बांधे जाते। हाँ, ये कर्म का जो नियम है वो भगवान के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि भगवान ने बनाया है वो नियम और हम उसके द्वारा बंधे जाते हैं। तो इसके बाद भगवान ने अर्जुन को चौथे अध्याय में यज्ञों के बारे में बताया, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, द्रव्य यज्ञ इत्यादि इत्यादि बताया, और उन्होंने मुख्य बात बताई कि सारे यज्ञों का मुख्य कारण क्या है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता। तो ज्ञानी लोग जो होते हैं वो स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, योगी लोग योग यज्ञ करते हैं, जो भक्त लोग होते हैं वो जप यज्ञ करते हैं, तो हर कोई किसी न किसी प्रकार के यज्ञ में लगा रहता है। तो जो आध्यात्मिकता के बारे में नहीं जानता है वो द्रव्य यज्ञ करता है। द्रव्य यज्ञ करना मतलब किसी को दान देना, रोटियां दान देना, खाना दान देना, कुछ और कपड़ा दान देना, मकान किसी को दान देना। तो इस तरीके से दान देते देते धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर विरक्ति की भावना आती है, डिटैचमेंट आ जाता है उसके अंदर। तो इस प्रकार बाद में प्रश्न आता है कि इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है, कर्म ज्ञान और योग में श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ, जो व्यक्ति यज्ञ ज्ञान के साथ करता है कि जो कुछ भी मिला है मुझे वो कृष्ण की कृपा से मिला है और मुझे कृष्ण को ही ऑफर कर देना है, वो व्यक्ति जो है सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से भगवान आगे बताना शुरू करते हैं चौथे अध्याय में ही, और बोलते हैं, कहते हैं कि जो दुख है वो आते जाते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को कृष्ण के भक्ति करने में अग्रसर होना चाहिए। तो पूछा जाता है हमें क्या करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं हम लोगों के पास कुछ ना कुछ विशेषता होती है, जैसे किसी को ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, किसी को पेंटिंग आती है, किसी को कोई कारपेंटर बहुत अच्छा है, कोई कुछ और अच्छे से कर सकता है, उन सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, कोई बहुत अच्छा गाता है, किसी को कुछ पोजीशन है उस पोजीशन का यूज करना। जैसे कुछ समय पहले एक नेता थे, उन नेता की लड़की की शादी थी, तो पता किया तो पता चला कि 2000 लोग उनकी लड़की की शादी में आने वाले हैं। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, उन्होंने बोला कि हमारी बेटी की शादी है, आप 2000 भगवत गीता लेके आ जाइए, हम सबको एक एक भगवत गीता देंगे, और उन्होंने उस भगवत गीता को सबको बांटा। तो ये भी एक यज्ञ है, भगवत गीता यज्ञ। ऐसे एक कंपनी वाला था, वो हमसे बोला कि भाई हम रोज हर साल जो है अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, इस बार गिफ्ट के साथ एक एक भगवत गीता भी उनको हम फ्री में देंगे। तो ये भी एक यज्ञ है। तो इस प्रकार से यज्ञ करना जो है भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं कि कृष्ण, मतलब कर्म जो है उनमें कृष्ण को जो है ऐड कर देना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो नौकरी करता है, 50-60 हजार रुपए कमाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, कुछ 5%, 10%, 20% इसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आपको पता होगा कंपनियां भी TDS काटती हैं, TDS मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, है ना। तो 60,000 किसी की सैलरी होती है तो 10,000 काट लेती हैं, 50,000 ही देती हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति को क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअल TDS भी कटवाना चाहिए, कुछ अंश जो है अपनी कमाई का वो भगवान को मंदिर में भगवान को दान करना चाहिए। तो जो भी हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, जो कुछ भी हम अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं, वो मल मूत्र में परिवर्तित हो जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन भगवान को अगर हम भगवान के लिए कुछ भी करते हैं तो वो जो है हमेशा के लिए हमारा संचित हो जाता है। तो इसका मतलब ये समझिए, अगर हम भगवान के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो समझिए कि भगवान के धाम में हमारा घर जो है तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से हमें किसी भी तरीके से भगवान के मंदिर में, भगवान का मंदिर निर्माण हो रहा है या भगवद गीता बांटने में, इस तरीके से भगवान के भक्तों की सहायता करनी चाहिए। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि संसार में रहते हुए इस तरीके से तुम भक्ति कर सकते हो। अभी हम शुरू करते हैं, चौथा अध्याय खत्म हुआ, अभी पांचवा अध्याय हम शुरू करते हैं भगवद गीता का। पांचवें अध्याय में भगवान ने पिछले में बताया कि संसार में रहते हुए कर्म करो। अभी अर्जुन का प्रश्न आया, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। अर्जुन वाच संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योग च संशशि यच्छे आयत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अरे आप बोल रहे हो कि युद्ध करो, लेकिन मैं युद्ध नहीं करना चाहता। फिर आपने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, अनासक्त रहो, ध्यान करो, ज्ञान योग, अब वैराग्य के बारे में बताया, यज्ञ के बारे में बताया। अभी मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे एक चीज बताइए, मुझे संन्यास लेना है या युद्ध करना है? अगर आप लोगों को ध्यान होगा या आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, सेम क्वेश्चन अर्जुन ने थर्ड चैप्टर में ही पूछा था। यानी थर्ड चैप्टर का आंसर और फोर्थ चैप्टर के आंसर से अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया, उसका क्वेश्चन वैसा का वैसा ही बना रहा। तो अर्जुन फिर से यही प्रश्न पूछता है, तो भगवान कहते हैं तुम अपने कर्मों को करो, डू योर ड्यूटी विद द कॉन्शियसनेस ऑफ संन्यास, संन्यास की भावना के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो। ये नहीं कि कर्म से ही संन्यास ले लो, कर्म से संन्यास लेना मतलब कर्म ना करना, जो ज्ञानी लोग करते हैं। भगवान ने कहा वो नहीं करना है, आपको कर्म करना है, लेकिन कर्म किस भावना के साथ करना है? संन्यास की भावना के साथ कर्म करना है, मतलब कर्म का जो रिजल्ट आएगा उससे मुझे आसक्त नहीं होना है। भगवान इसी बात को थर्ड चैप्टर में बताते थे और इसी बात को भगवान फिफ्थ चैप्टर में भी बार बार क्लियर करते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म जो है वो संन्यास से बढ़कर है। अभी इस चैप्टर में भगवान थोड़ा और डिटेल में जाने, क्योंकि अर्जुन को समझ में नहीं आया इसलिए भगवान डीप में जाकर अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे मायावादी लोग होते हैं उनकी तरह कर्मों को त्यागना नहीं है, वो लोग क्या करते हैं कर्म त्याग के हिमालय में चले जाते हैं। यहां पे तुम्हें क्या करना है, संसार में रहते हुए कर्म करो, लेकिन जो कर्म का फल है उसके प्रति आसक्त मत हो। फल की आसक्ति जो है, फल को एक्सपेक्ट जो हम करते हैं वही हमारी समस्या है। देखिए संसार में अगर आप, हम लोग अपने जीवन में भी देखेंगे तो जब तक कुछ कार्य का फल का हमें इच्छा नहीं होती हम वो कार्य नहीं करते हैं, मोस्टली ऐसा करते हैं। जैसे मान लीजिए हम शिमला जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, वहां पे जो है नज़ारे हैं उसको देखना चाहते हैं। कुछ भी कार्य हम जो करते हैं क्यों करते हैं, कुछ ना कुछ इच्छा के साथ, कुछ ना कुछ फल की इच्छा होती है। भगवान कहते हैं उस इच्छा को छोड़ दो। तो एक लड़का था, वो क्या करता था, जब भी वो पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई करते समय उसको लगता था अरे उसके माता पिता जो हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, उसको कहीं घूमने नहीं जाने देने चाहते हैं। अभी वो जब नौकरी करूँगा तो मैं अमेरिका में नौकरी करूँगा और वहाँ पे मैं बहुत ऐश करूँगा। इस तरीके से सोचता हुआ वो लड़का धीरे धीरे करके पढ़ाई अपनी कंप्लीट किया, उसकी जॉब भी अमेरिका में लग गई। उसकी जॉब लगी, $5,000 उसको मिलते थे महीने के। तभी उसको उसके पिता का एक लेटर मिला, पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हें $5,000 मिल रहे हैं, $1,000 तुम अपने पास रखो और $4,000 जो है हमको भेज दिया करो। अब ये लड़के ने सोचा अरे पिताजी कितने निष्ठुर हैं, वो केवल $1,000 मतलब आप समझिए यहाँ का 60-70 हजार रुपए, केवल उतना ही रुपए हमारे लिए छोड़ रहे हैं, बाकी सारा रुपया अपने लिए मांग रहे हैं। हाँ, इस तरीके से उसने कहा ठीक है, वो मना नहीं कर पाया बेचारा और $4,000 हर महीने जो है वो अपने पिताजी को भेजता रहा। 5 साल हो गए, 5 साल के बाद पिताजी ने उससे कहा बेटा अभी तुम वापस आ जाओ इंडिया और विवाह करो और हमारा जो बिजनेस चल रहा है उसको तुम देखो। तो ये लड़का आया घर पे और शादी वादी हो गई, उसकी शादी के समय उसको एक चेक मिला, तो उस चेक में पिताजी से चेक मिला, उस चेक में अमाउंट कितना था पता है, $4,000 जैसे वो पा रहा था x12x5 12 महीने का और 5 साल का पूरा पेमेंट, यानी कि कितना हो गया लगभग $2,50,000 के आसपास, $2,40,000 इतना पेमेंट जो है उसको उन्होंने दे रहे थे। अभी वो पिताजी को अपने बहुत अचरज भरी निगाहों से देख रहा है, पिताजी मैं तो सोच रहा था आप ऐश कर रहे होंगे मेरे पैसों से, मैं ऐश नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपने तो सारा पैसा मुझे रिटर्न कर दिया। हाँ, तो पिताजी ने कहा बेटा कि अगर तुम्हारे पास ये इतना पैसा वहां पर रहता तो तुम इंद्रिय तृप्ति में लगाते, दारू पीते, जुआ खेलते और पता नहीं क्या क्या गलत कार्य करते, इसलिए मैंने ये किया कि अभी जो है वो तुमसे उस समय पैसा मांग लिया। तो उस लड़के ने कहा पिताजी मैं अभी भी तो गलत काम कर सकता हूँ। बोले नहीं, अभी तुम्हारी बीवी आ गई और तुमको सही कर देगी, वो सब ध्यान रखेगी तुम कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो, इस तरीके से तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, वो मैनेज करेगी मनी को। तो इस तरीके से उसका जो प्रेम था पिताजी के प्रति जो खत्म हो गया था वो वापस आ गया कि पिताजी कितने अच्छे हैं, मैं तो उनको फालतू ही गलत समझ रहा था। ऐसे ही भगवान हमसे चाहते हैं। हाँ, भगवान क्या बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुकदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि, कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा मत करो और अपने आप को कर्म करने का हेतु भी मत समझो कि मैं कर रहा हूं इसलिए काम हो रहा है, ये भी मत समझो और साथ साथ में कर्म ना करने के प्रति आसक्त मत हो। ये 3 चीजें भगवान इस श्लोक में बताते हैं। अर्जुन अभी रो रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि वो कर्म किए बिना ही कर्म के जो आने वाला रिजल्ट है उसको सोच सोच के दुखी था। क्या सोच रहा था? अरे मैं इतना महान हूं, लोग मैं युद्ध करूंगा तो लोग मर जाएंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि मैं महान हूं, देखने वाला कौन होगा। इस तरीके से वो अपने बारे में ही सोच रहा था, अपने परिवार के बारे में सोच रहा था, लेकिन भगवान के बारे में नहीं सोच रहा था जो कि हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं। भगवान के बारे में ना सोच के वो अपने बारे में सोच रहा था। इसलिए भगवान ने उसको थर्ड चैप्टर में निष्काम कर्मियों के बारे में बताया और अभी फिफ्थ चैप्टर में इस निष्काम कर्मियों को थोड़ा और डीप में और क्लियरली बताने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, हाँ, उसके पास ज्ञान है, तो वो क्या करता है, वो भौतिक चीजों से वो विरक्ति प्राप्त कर लेता है। ये भी अच्छा है, किसी के पास ज्ञान है और भौतिक चीजों से दूर रहता है, वो सोचता है कि भौतिक चीजें मुझे फंसा देंगी, इसलिए वो भौतिक चीजों से दूर रखता है। लेकिन दूसरा भी एक रास्ता है, दो रास्ते हैं, एक कर्म का रास्ता है, एक ज्ञान का रास्ता है। ज्ञान के रास्ते में व्यक्ति जो है जानबूझ के चीजों से दूर हटने का प्रयास करता है, लेकिन कर्म का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा है। कर्म के रास्ते में व्यक्ति जो भी फल मिलता है उसको अपने कार्यों का, वो फल भगवान को अर्पित कर देता है। इससे क्या होता है, उसका जो चित्त है वो धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाता है और ज्ञान जो है अपने आप प्रकट हो जाता है। तो अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति संन्यास लेता है तो संन्यास लेके क्या करेगा, वो हिमालय पे चला जाएगा, हिमालय में जाके क्या करेगा, वहां कोई काम नहीं करना है, इस तरीके से रहने का प्रयास करेगा। लेकिन जो कर्म करता है वो क्या करेगा, वो वर्णाश्रम के अनुसार अपना जीवन को जिएगा। उसके अंदर भले ही बहुत सारी इच्छाएं हो, हाँ, लेकिन फिर भी वो अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए इस संसार में भी चैन से रहेगा और फिर भगवत धाम जाएगा इस जन्म के बाद। तो अर्जुन ने पूछा, अरे अगर मैं इस संसार में रह के ये सब करूंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, बहुत कठिन है ये सब करना। भगवान ने कहा, नहीं, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करो। भगवान कहते, तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के अनुसार कार्य करो, क्षत्रिय के अनुसार कार्य करो। हाँ, तो भगवान ने इस प्रकार बताया कि कर्म और सांख्य दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आता है। जो कर्मी लोग हैं वो कृष्ण के पास जाते हैं क्योंकि वो भगवान को अपने फलों को अर्पित कर देते हैं, और ज्ञानी लोग भी भगवान के पास जाते हैं। लेकिन जो ज्ञान का रास्ता है वो बहुत कठिन है, कर्म का रास्ता बहुत इजी। तो भगवान ने ज्ञान मतलब सांख्य योग, तो भगवान ने भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में जब आत्मा और शरीर के बारे में वर्णन किया है उसी को सांख्य बोला जाता है। पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच विषय वस्तु, मन बुद्धि अहंकार, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, इन सबका ज्ञान जो है उसको सांख्य बोला जाता है। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये बोल बोल के कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, वो अपने अपने स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसको बोला जाता है ज्ञान, ज्ञान योग। और कर्म संन्यास क्या है, हा? कि वो जो भक्त है वो क्या करता है, वो कर्मी कर्म के साथ अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है और इस प्रकार वो प्रसन्न रहता है। तो इस तरीके से भगवान आगे बताना शुरू करते हैं, कहते हैं, ये तो हो गया, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम अप्यास्थी तह सम्यक उभयोर विन्दते फलम। ये जो सांख्य योग है और जो कर्म योग है दोनों एक ही हैं। सांख्य योग मतलब ज्ञान योग, ये दोनों एक ही जैसे हैं, इनको अलग अलग मत समझो। फिर भगवान बताते हैं कि निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास जो है कठिन और संकटपूर्ण है। निष्काम कर्म योग मतलब कर्म करते हुए उनके फलों की इच्छा ना रखना, बल्कि कहें तो भगवान को अर्पित करना। तो सबसे पहले व्यक्ति को यह समझना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का दास हूं। इस प्रकार से जैसे एक कंपनी में कोई कार्य करता है, जैसे अगर कंपनी में कोई बहुत अच्छे से काम करता है तो कंपनी उसको प्रॉफिट देती है, उसको इंक्रीमेंट देती है। जैसे कि किसी देश में कोई रहता है, टाइम से टैक्स पे करता है तो गवर्नमेंट उसको डिफरेंट फैसिलिटीज देती है। जैसे हम लोग फैमिली में रहते हैं, हाँ, तो अगर हम अपने परिवार माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो माता पिता हमसे प्रसन्न रहते हैं, लेकिन तो जिससे हमारा भविष्य अच्छा रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसी कंट्री में रहते हुए चोरी करता है तो आसुरी हो जाता है। मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी कि एक व्यक्ति के दो पुत्र थे, एक पुत्र बहुत अच्छे तरीके से पिता की सारी बातें मानता था और दूसरा पुत्र जो था वो पिता के अगेंस्ट में चलता था, उनसे बहुत सारे रुपया मांगता रहता था हमेशा और बहुत सारे गलत कार्यों में उनको लगाता रहता था। तो कुछ दिनों के बाद पिता ने अपने बड़े वाले बेटे को बुलाया और बोला, बेटा तुम आओ और मेरा जो कार्यभार है उसको संभालो। और छोटे बेटे को बोला, चलो तुम हल चलाओ, चल के तुम खेती बाड़ी करो, तुम इसी के लायक हो। तो इस तरीके से निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति ये सोचता है, मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण मेरे पिता हैं, इस प्रकार वो बंधन में नहीं फंसता है। तो भगवान 18वें अध्याय में 45 नंबर 46 नंबर श्लोक में इन सब में बताते हैं कि अपने अपने कर्म के हिसाब से, अपने अपने स्वभाव के हिसाब से व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। कोई ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मणोचित कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण का कार्य क्या है? यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ाई करना, पढ़ाना लोगों को भगवान के बारे में, दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मणों का काम है। इस तरीके से ब्राह्मण लोगों को कार्य करना चाहिए। क्षत्रिय का कार्य क्या है? PAW, प्रोटेक्शन करना, लोगों से रक्षा करना, और एडमिनिस्ट्रेशन करना, और लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना। जैसे प्रोटेक्शन किसका करना है? गाय का, बूढ़े लोगों का, स्त्रियों का, बच्चों का, इन सब का प्रोटेक्शन करना है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सब लोग अपने अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना, इसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो करना। और साथ साथ में वेलफेयर यानी कि मंदिरों का निर्माण करवाना, जिससे कि आध्यात्मिक पोषण जो है सभी लोगों को मिलता रहे, ये क्षत्रियों का काम है। फिर वैश्यों का काम क्या है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, खेती करना, गाय की रक्षा करना और व्यापार करना। और शूद्रों का काम क्या है? शूद्रों का काम है कि उन सबको हेल्प करना। तो देखिए, ये स्वभाव के अनुसार कार्य करने को भगवान बोल रहे हैं, जाति के अनुसार नहीं कि भाई तुम जो है ब्राह्मण परिवार में जन्म लियो इसलिए तुम ब्राह्मण हो, हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, नहीं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो है भगवान कार्य करने को बोल रहे हैं आपको। तो आप कहीं भी जाओ पूरे विश्व में, ये चार क्लास के लोग आपको मिलेंगे, कहीं भी चले जाओ। मैंने पहले भी बताया था, ये चारों लोग यहाँ पे परिवार में, चाहे आप देखिए कहीं पूरे किसी संस्था में देखिए, किसी कंट्री में देखिए, हर जगह ये चार तरीके के लोग मिलेंगे, क्योंकि भगवान ने खुद इसका निर्माण किया, इस व्यवस्था का। लेकिन हर कोई व्यक्ति निष्काम कर्मयोग कर सकता है अपने अपने कार्यों को करते हुए, हर कोई व्यक्ति। तो निष्काम कर्मयोग क्या है? पहला, मैं भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं और मैं विरक्त भाव में कर्म करूंगा। ये चार चीजें जो हैं इसको निष्काम कर्मयोग बोला जाता है। कोई इसको पढ़े? कोई इसको पढ़ेगा, इन चार चीजों को जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है? हाँ पढ़िए, मतलब हाँ, तो पहला है अपनी रियल पोजीशन को जानना कि मैं भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं। और आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है, यानी अपनी वास्तविक स्थिति को जानना। फिर दूसरा, मुझे कर्म क्या करना है? तो मुझे कर्म क्या करना है? मुझे भगवान की सेवा करनी है। फिर उस कर्म को करते समय मेरा भाव क्या रहेगा? तो वो है, मैं विरक्त भाव में कर्म करूंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारी पिक्चर्स दी हुई हैं, कोई भगवत गीता और भगवत दर्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये एक इंजीनियर हैं जो कि हमारे इस्कॉन के भक्त हैं, ऐसे करके कुछ यहाँ स्त्रियाँ दिखाई हैं भगवान के लिए नित्य, और ये कीर्तन इत्यादि घर पे कर रहे हैं। अभी देखिए, इस एग्जाम्पल में समझने का प्रयास कीजिए, ये दो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, एक गार्डनर है और एक कारपेंटर है, माली और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बढ़ई, हाँ एक माली है और एक बढ़ई है, हाँ ये दोनों लोग कार्य करते हैं। अभी गार्डनर जो माली है वो क्या करता है, वो गार्डन जो है उसमें मालिक ने उसके उसको बीज ला के दिए हैं, मालिक पानी की व्यवस्था करता है और भी जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं वो सब देता है, और इस तरीके से उस गार्डन में कई सारे फूल निकलते हैं। तो जब फूल निकलते हैं तो वो क्या करेगा माली? वो फूलों को अपने मालिक को अर्पित कर देगा। वो ये नहीं कहेगा हाँ कि आप जाओ यहाँ से, मैं यहाँ रहूँगा, ये मेरा है, ये मेरा है, मैंने इसको डेवलप किया है, नहीं। ऐसे ही कारपेंटर जो बढ़ई है वो एक बहुत सुंदर सी मान लो टेबल बना रहा है या कुछ और बना रहा है, तो उसको वो लकड़ी लाके दिया, उसको इंस्ट्रूमेंट लाके दिया, उसको जगह दिया, उसको पावर सप्लाई दिया, ये सारी चीजें मालिक ने दिया, तो अंत में वो ये नहीं कहेगा, कहेगा ये टेबल मेरी है मुझे पसंद आ गई, नहीं, वो अपने मालिक को दे देगा। ठीक वैसे ही हमको भी कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग भी यहां पे संसार में आते हैं तो हमको कई सारी चीजें मिल रही हैं, सूर्य का प्रकाश फ्री में मिल रहा है, हवा हमको फ्री में मिल रही है, पानी हमको फ्री में मिल रहा है, भगवान इतनी सारी चीजों की व्यवस्था किए हुए हमारे लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको ही अर्पण कर देना चाहिए। कोई ये पढ़ेगा इस स्लाइड को, मैं जिसका नाम लेता हूं वो पढ़िए, दीप्ति चौहान जी पढ़िए, दीप्ति चौहान जी आपको हमारी आवाज आ रही है, हाँ पढ़िए। मैं भगवान का सेवक हूं, मैं ईश्वर द्वारा किया गया कार्य करता हूं, कार्य कैसे करते हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ क्षमता ईमानदारी समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करता हूं, और कर्मफल मिलेगा तो करूंगा क्या, मैं इसे भगवान को सौंप दूंगा। ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है निष्काम कर्मियों की, तेरा तुझको अर्पण, क्योंकि सब कुछ हम भगवान से ले रहे हैं, एक चीज भी ऐसी बताइए जो आप लेके आए थे, सब कुछ भगवान के द्वारा दिया हुआ है, तो भगवान के द्वारा दिया हुआ हमें भगवान को ही अर्पित कर देना चाहिए। जैसे कई कंपनियां होती हैं, उसमें आप जब जाते हैं कंपनी के अंदर तो आपकी चेकिंग होती है, और उसके बाद वापस आते हैं तो भी चेक करते हैं कि कहीं आप कुछ लेके तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो चीजें कंपनी की हैं वो वहीं रहनी चाहिए। एक बार ऐसे मेरा एक फ्रेंड था, वो क्या किया, कंपनी से दो पैकेट पेपर्स उन्होंने जो है चोरी कर लिए, उनको गेट पे पकड़ लिया गया, तो वो लास्ट में चेक किया जाता है। एक बार आप कंपनी के अंदर आए, आप कंपनी के अंदर काम करो अपना जितना भी टाइम है, उसके बाद कंपनी से जाते टाइम आपको सारा सामान वहीं पर छोड़ के जाना है, उससे आसक्त नहीं हो जाना कि ये मेरा हो गया अभी कुछ देर के लिए मिला था, नहीं। और साथ साथ में कंपनी के अंदर भी आपको रेस्ट नहीं करना है, काम करना है, बिना काम किए आप कंपनी के अंदर नहीं रह सकते। तो ऐसे ही संसार में भगवान ने हमको सब कुछ दिया हुआ है, सूर्य दिया हुआ है, बारिश दी हुई है, हवा दी हुई है, इतने सारे फ्रूट्स दिए हुए हैं खाने को, इतने सारे मसाला हैं, इतनी सारी सब्जी हैं, फ्लावर हैं, सब कुछ है, सोना है, चांदी है, ये सब कुछ किसका है, ये सब भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं कृष्ण के लिए ही तो ठीक है, और अगर हम कृष्ण के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो इष्टान भोगानि वो देवा, उसको क्या बोला जाता है, इस्तेन एवसा, उसको चोर बोला जाता है, किसी दूसरे का है और ये दूसरा यूज कर रहा है बिना उसको अर्पण किए हुए, तो चोर माना जाता है। तो हम चोर माने जाएंगे अगर हम इस तरीके से करेंगे। तो करना क्या चाहिए, जो भी सोना चांदी मिला है, जो भी फ्लावर है, फ्रूट है, सब भगवान को ऑफर करना चाहिए। अभी मान लीजिए कोई किसान की खेती करता है तो फसल उगती है, तो फसल भी वो क्या करता है, वो भगवान को ऑफर करता है, क्योंकि भगवान की कृपा से मिल रही है। तो कोई पूछ सकता है आप कौन है, तो मैं भगवान का सेवक हूं। आप क्या कार्य करते हो, मैं जो भगवान ने मेरे लिए निर्धारित कार्य किया है मेरे स्वभाव के अनुसार वो कार्य करता हूं। कैसे करता हूं, पूरी क्षमता के साथ करता हूं, पूरी ईमानदारी समर्पण करता हूं, कड़ी मेहनत करता हूं। लेकिन कर्मफल के साथ क्या करते हो, कर्मफल तो मेरा नहीं है, वो तो भगवान का, क्योंकि सारी फैसिलिटी तो भगवान ने दी हुई है, इसलिए मैं भगवान को अर्पण कर देता हूं। जैसे कि हनुमान जी, हनुमान जी से पूछो आप कौन हो, मैं भगवान राम का दास हूं। आप क्या करते हो, मैं भगवान राम के लिए कार्य करता हूं। कैसे करते हो, पूरी ताकत के साथ करता हूं, पूरी मेहनत करता हूं, और कर्म फल को क्या करते हो, वो तो मैं बोल देता हूं कि भगवान की कृपा से ही संभव हो पाया, मेरे द्वारा कैसे संभव था, मैं कैसे इसको कर सकता था। तो वो हनुमान जी क्रेडिट भी नहीं लेते हैं। जैसे बोला जाए कि भाई सीता जी की खोज किसने किया, तो बोलते हैं हनुमान जी ने किया। हनुमान जी से पूछो तो बोलेंगे मैंने नहीं किया, वो तो भगवान राम की कृपा से संभव हो पाया। वो क्रेडिट भी खुद नहीं लेना चाहते। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा। मैंने ये किया, मैं ही कर सकता हूं, ये भावना जो है हमारे अंदर से निकल जाएगी। क्योंकि कोई पढ़िए इसको, इस स्लाइड को पढ़िए, मैं बताता हूं कौन, पढ़िए पढ़िए। पहला, मैंने यह किया और मैं ही केवल इसको कर सकता हूं, इस भाव को निकाल देना चाहिए। हम भगवान की अनुमति के बिना अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकते। और तो और इस दुनिया में इतनी सारी अनिश्चितताएं हैं, हम अनिश्चित हैं, तो परमेश्वर के विश्वसनीय सेवक के रूप में काम करते हुए झूठा अहंकार कि मैं शरीर हूं और मैं करने वाला हूं, इस भावना को मन से निकाल देना चाहिए। किए गए कार्य का कोई श्रेय ना लें, जो भी हमने किया उसका श्रेय हमको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान उसको किसी और से भी करा सकते हैं, और साथ साथ में जो भी फल हमको मिले उसको भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तो अभी आप समझ सोचिए, आइंस्टीन करके एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, तो इतने बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने साइंस में बहुत बड़ी बड़ी चीजें किया, लेकिन उनका जो दिमाग था, उनकी जो बुद्धि थी, वो किसने दिया? उनको भगवान कृष्ण ने ही दिया। तो अभी आप कहें कि वो मर गए तो उनका दिमाग और उनकी बुद्धि को ट्रांसफर करके किसी दूसरे में लगा दिया जाए, नहीं, वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक इन सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं भगवान की अनुमति के बिना, मैंने यह किया मैं ही कर सकता हूं, यह भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार का हमें श्रेय नहीं लेना चाहिए, विनम्रता पूर्वक ईश्वर को कर्म फल जो है अर्पण कर देना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक चीज समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान कृष्ण ही तुमको ये ज्ञान दिया है, तुमको बुद्धि दिया है, तुमको ये ब्रेन दिया है, जिसके द्वारा तुम जो है ये सारी चीजें कर पा रहे हो, हाथ दिया है, पैर दिए, सारी चीजें उन्होंने ही तुमको दी है। एक बार की बात है, एक लड़की की शादी हुई, शादी करने के बाद वो अपने ससुराल गई, ससुराल से कुछ दिनों के बाद वापस आई तो एक नथुनी खरीद, उसके पति ने उसको नथुनी दिया, बहुत सुंदर नथुनी थी, वो पहन के घर पे आई और अपनी सखियों से मिली, तो सखियों ने पूछा अरे वाह ये किसने तुमको दिया, तो उसने बोला कि मेरे पति हैं वो जो हैं वो गल्फ में नौकरी करते हैं, वहाँ से उन्होंने जो है ये नथुनी ला के मुझको दिया हुआ है। तो वहाँ पे एक पोएट खड़े थे, कवि खड़े थे, उन्होंने बहुत सुंदर कविता बोली, मुझे एक्चुअली कविता भी भूल गया मैं क्या थी, ऐसा कुछ था, नथुनी दिया भरतार ने, ऐसा कुछ था, उसका अर्थ ये था कि जो नथुनी है उसको तुम्हारे पति ने दिया है, तो सब लोग पूछ रहे हैं क्या है क्या है क्या है, कैसी इतनी सुंदर लग रही है, और नाक दी है भगवान ने, उसके बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा, अगर नाक नहीं होगी तो नथुनी कोई कैसे पहन सकता है, हाँ, तो नाक के बारे में कोई नहीं देख रहा है, उसके बारे में सब लोग भूल गए हैं। तो भगवान हमको बुद्धि दे रहे हैं, भगवान हमको बल दे रहे हैं, भगवान कहते हैं बलों बल देने वाला मैं हूं, हाँ, इस प्रकार से भगवान ही हमको ये सारी चीजें दे रहे हैं, जिन सारी चीजों का उपयोग करते हुए हम जीवन जी रहे हैं वास्तव में, और हम लोग क्या करते हैं, हम उन सारी चीजों का शोषण करने का प्रयास करते हैं। चूंकि भगवान कृष्ण है इसीलिए सूर्य प्रकाश दे रहा है, इसीलिए सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, बारिश हो रही है, हवा मिल रही है हमको, ऑक्सीजन मिल रही है ग्रहण करने के लिए, भगवान नहीं हो तो हमें कैसे मिलेगी, भगवान ही बीज दे रहे हैं, भगवान ही बारिश दे रहे हैं हमको, हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए। एक कुत्ता था, तो कुत्ते ने एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी देखी, तो उसने कहा अरे यार इतनी बड़ी बैलगाड़ी है इसको कौन चलाएगा, तो वो क्या किया, वो बैलगाड़ी के दो बैलों के बीच में चला गया, वहां पे एक डंडा लटकता रहता है, और वो बीच में चला गया और थोड़ी देर में बैलगाड़ी चलने लगी, तो उसको ये लगने लगा कि मैं ही चला रहा हूं, उसको यही लगने लगा मैं ही चला रहा हूं, तो किसान जो उस बैलगाड़ी को चला रहा था उसने कुत्ते को मारा, तो कुत्ता भागा, बोला अरे मेरे बगैर भी बैलगाड़ी चल सकती है। ऐसे करके बहुत सारी कथाएं हैं। एक बार पंडरपुर, महाराष्ट्र में पंडरपुर आता है, वहां पे बहुत कई सारी मूर्तियां बनती हैं, कभी देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनती हैं, कभी भगवान पंडरीनाथ की भी मूर्ति बनती है, तो भगवान की मूर्तियां बनती हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनती हैं, तो मिट्टी की मूर्तियां जो है ऐसे सामान्य रूप से उठाई नहीं जा सकती, भारी होती हैं, तो उनको गधे घोड़े इत्यादि पे लाद के लेके जाया जाता है। तो एक गधा था, एक मूर्तिकार था, उसका एक गधा था, वो गधा जब भी चलता था मूर्ति को लेके तो सब लोग प्रणाम करते थे, ये गधा सोचता था अरे मेरी इतनी इज्जत, सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वो जानता नहीं था कि वास्तव में उसको कोई प्रणाम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर जो मूर्ति रखी हुई है भगवान की उसको लोग प्रणाम कर रहे हैं। तो एक दिन वो बेचारा गधा जो था वो अकेला आ रहा था, तो देख रहा है कोई उसको प्रणाम नहीं कर रहा है,
तब उसको पता चला कि वास्तव में उसकी कुछ भी विशेषता नहीं है, विशेषता किसकी है, भगवान की। तो ये चीज जानना। और दूसरा है कि मैं करने वाला हूं, वो भी गलत है, क्योंकि बुद्धि भी भगवान ने हमको दी हुई है। अगर हम ये जान लेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे जो अहंकार हमारे अंदर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये दो चीजें, हम क्यों कार्य करें। अभी प्रश्न आया कि फल जो है वो भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, और दूसरा हमें अपने आप को कारण भी नहीं मानना चाहिए कि मेरे कारण हो रहा है, फिर कार्य करें क्यों। तो इन दो चीजों के लिए, पहला है हृदय का शुद्धिकरण, हाँ, प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट। ये संसार जो है वो आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है, आप रहें या ना रहें ये चलता रहेगा। हमसे किसी ने पूछा, अरे वो व्यक्ति मर गया, उसके बच्चों का क्या होगा। कोई भी व्यक्ति हो वो जाएगा तो संसार चलना बंद नहीं हो जाएगा, 10 दिनों में उसको बिल्कुल भूल जाएंगे लोग। एक महाराज जी कहते हैं कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है तो उसको 10 दिनों के लिए मर जाना चाहिए, अपना मोबाइल बंद कर ले और कहीं चला जाए। देखिए 10 दिन में उसको लोग भूल जाएंगे कि वो था भी यहां पर, सब कुछ चलता रहेगा। हमें अपने आप को कारण नहीं समझना चाहिए। एक बार कठोपनिषद में एक कथा आती है कि एक बार देवताओं ने असुरों को हरा दिया। असुरों को हराने के बाद सारे देवता अपनी अपनी पत्नियों के पास आए और बोलने लगे, देखो मैंने इतना अच्छा युद्ध किया, इतना अच्छा युद्ध किया कि वो असुर भाग गए सब। सब लोग यही बोलने लगे। तो भगवान को पता चला, तो भगवान ने एक यक्ष का रूप धारण किया, और यक्ष का रूप धारण करके वो देवताओं के पास आए। भगवान ने तिनका दिया वरुण देव को, बोले वरुण देव से पूछा, आप क्या करते हैं। बोले मैं तो जिधर बोलो उधर पानी बहा देता हूं। भगवान ने कहा, ये तिनका है, आप इसको बहा के दिखाइए। वरुण देव ने पूरी कोशिश के लिए, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने पवन देव को कहा, इसको उड़ा के दिखाइए। पवन देव ने पूरे सारी कोशिश कर लिया, कुछ नहीं हुआ। अग्निदेव को बोला तो अग्निदेव भी उस तिनके को जला नहीं पाए। तो सब समझ गए, अरे ये तो कोई और नहीं है, शायद भगवान ही है जो हमारी, हमको हमारा रियल, हमारी औकात बताने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इंद्र को पता चला, तो इंद्र तो आया ही नहीं वहां पे, भाग गया, बोला मुझे नहीं जाना उधर, हाँ मैं भी हार जाऊंगा। तो हमें, हम जो कर रहे हैं वो केवल हमारे कारण हो रहा है ऐसा नहीं समझना चाहिए। पहली चीज तो भगवान की कृपा है, भगवान ने हमको जो सुविधाएं दी हैं उसके कारण ही हम कर पा रहे हैं, हमें खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। अब जैसे हमारे हाथ में कई सारी, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, अगर एक उंगली में घाव हो जाएगा तो मान लीजिए मुझे जो साइन वगैरह करना है मैं वो साइन नहीं कर पाऊंगा, इवन पेन को होल्ड करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हाँ, क्योंकि पेन जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक वैसे ही ये जो हाथ को उंगली सपोर्ट नहीं कर रही है, वैसे ही हम लोग भगवान को सपोर्ट नहीं कर रहे। जब वो उंगली की चोट सही हो जाएगी तो हम भगवान को सपोर्ट करने लगेंगे, हम, हमारा उंगली जो है वो हाथ को सपोर्ट करने लगेगी। ठीक वैसे ही जब हम प्योर हो जाएंगे तो हम भगवान को सपोर्ट करने लगेंगे। भगवान का काम तब होगा जब जीव स्वस्थ होंगे। जिस प्रकार से जो उंगली है वो श्रेय नहीं लेती, वैसे ही जीव को भी श्रेय नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए हाथ ने कुछ काम किया तो उंगली यह नहीं बोलती कि मैंने किया, हाथ ने किया वो व्यक्ति की विशेषता मानी जाती है। जैसे मान लीजिए मेरे दरवाजे पे किसी ने खटखटाया तो मैंने जाके दरवाजा खोला, हाँ, अभी हाथ ने खोला, उंगलियों ने खोला, तो कोई ये नहीं बोलेगा आपके हाथ ने दरवाजा खोला, आपने 2 उंगलियों की सहायता से दरवाजा खोला, अंगूठे की सहायता से दरवाजा खोला। नहीं, श्रेय किसको मिलेगा, उस व्यक्ति को, सुंदर गोपाल दास ने दरवाजा खोला। ठीक वैसे ही श्रेय किसको मिलना चाहिए, भगवान को मिलना चाहिए। हम लोगों को श्रेय लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हम तो भगवान के अंश हैं। जैसे उंगली जो है शरीर का अंश है, ऐसे हम भगवान के अंश हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान को श्रेय देने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर उंगली हमारे शरीर से कट के गिर जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यूजलेस है, वैसे ही हम अगर भगवान से दूर रहेंगे तो हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है। भगवान के साथ लिंक रहने से हम बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं, और भगवान से दूर रह के हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई वैल्यू नहीं होगी हमारी कार्यों की। तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा, करना चाहिए कि मेरी उपस्थिति जो है वो अनिवार्य नहीं है, भगवान में निमित्त बना रहे हैं। तो ये उंगली जो है वो उसको जो है, जब तक वो भगवान, जब तक हाथ से कनेक्टेड है तब तक वो कार्य कर रही है। तो इस संसार में क्या होता है, प्रकृति के द्वारा माया देवी जो है वो हमको नचाती है, हमको तीन गुणों के अंतर्गत वो नचाती है। इसके बारे में हम आगे के चैप्टरों में जानेंगे, जब भी लास्ट के चैप्टर्स आएंगे हम माया देवी के बारे में, खास करके प्रकृति के गुणों के बारे में समझेंगे। तो जब हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमको माया देवी के अंडर में दे देते हैं और माया देवी हमको खूब नचाती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, जैसे गांधी जी एक अच्छे आदमी हैं, गांधी जी अच्छे आदमी थे, अभी अन्ना हजारे करके एक अच्छे आदमी थे, वो कुछ करना चाहते थे, तो गवर्नमेंट को जो ऑफिसर्स होते थे वो उनसे मिलना चाहते थे। हाँ, और इसी प्रकार दूसरे तरीके के भी लोग होते हैं, जैसे वीरप्पन टाइप के लोग थे जो चोर थे, तो उनको भी गवर्नमेंट मिलना चाहती, लेकिन किस तरीके से, उनको जेल में डालना चाहती गवर्नमेंट, क्योंकि वो अच्छी प्रजा नहीं है, उनको जेल में डालना चाहते हैं। अच्छी प्रजा जो है उसको खुले में रखते हैं, लेकिन जो बुरी प्रजा है उसको जेल में डाल देते हैं। वैसे ही भगवान जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को मान के चलते हैं, भगवान उनको आध्यात्मिक जगत में रखते हैं, और हम जैसे लोग जो भगवान को मानते नहीं हैं, भगवान की जो सुप्रीमता सुप्रीम है भगवान, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। ये जेल है वास्तव में जहां हम लोग रह रहे हैं। तो इस जेल में कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, हमको भी जेल में फैसिलिटी मिल रही हैं, एसी में, एसी रूम में रहते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर रहता है, बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही हैं, लेकिन इसका कारण ये नहीं है, ये नहीं समझना चाहिए कि हमको यहाँ हमेशा के लिए रहना है, हमें क्या करना है, यहाँ से निकलना है, इन चीज़ों का यूज करके भगवान को अपने कार्यों का फल समर्पित करके यहाँ से निकलना है। हमें ये समझना चाहिए कि हम भगवान के लिए निमित्त मात्र हैं, करने वाला कौन है, वही कर रहा है सब कुछ। इस तरीके से जब हम समझेंगे तो हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होता चला जाएगा। ओके? तो मैंने जैसा बताया कि हमारा जो ये जो संसार है ये सेल्फ डिपेंडेंट है, इसमें किसी की भी कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप चल सकता है। हाँ, हमारे हृदय में गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी, वो कौन सी गंदगी है, काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, उसके कारण क्या होता है, हमको हमारे जीवन बहुत सारे कष्ट मिलते हैं। तो हमको तीन चीजों को ध्यान देना चाहिए। चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो म्यूट कर लीजिए अपने को। ओके, तो तीन चीजें, बहुत सिंपल तीन चीजें हैं, वो क्या हैं, हमें दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, यानी हमें अपनी इंद्रियां, अपना मन और अपनी बुद्धि को कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम अपनी इंद्रियां, बुद्धि और मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम दूसरों का शोषण करेंगे। अगर हमारे अंदर लोभ होगा तो हम दूसरों की चीजों को भी हड़प लेंगे। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे वो दूसरे के खिलौने को पकड़ लेते हैं और उसको बोलते भाग जाए यहां से, उसका खिलौना ले लेते हैं। ऐसे ही जैसे मान लीजिए चार रोटियां हैं हमारे पास, हम दो लोग हैं तो दो दो रोटियां मिलके खा लेना चाहिए, ये नहीं अरे मैं तो आठ रोटी खाता हूं, हाँ तुमको मैं कैसे दो रोटी दूंगा, मैं चार खाऊंगा आज तो मुझे कम रोटियां मिल रही हैं, नहीं ये भावना नहीं, हमें क्या करना चाहिए, मिल बांट के खा लेना चाहिए। हाँ, तो भगवान के बारे में बताया, नारद जी कहते हैं भागवतम में, दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केनवा, हर व्यक्ति पे, हर भूत यानी हर जीव पे दया करना चाहिए और किसी भी प्रकार से संसार में संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। आपको पता है युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया था। तो महान महान लोग ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो जो बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, ये और विषय वस्तु, ये सब कृष्ण के द्वारा दी गई हैं। मैं आत्मा हूं और मैं इनसे अलग हूं। जो मन बोल रहा है मुझे वो नहीं करना है, कई बार लोग बोलते हैं मेरा मन ये कर रहा है, अरे आप मन थोड़ी हो, आप आत्मा हो। बोलते हैं मेरी बुद्धि ये करी, नहीं आप बुद्धि भी नहीं हो, आप आत्मा हो। हमें अपने आप को समझना चाहिए, हम आत्मा है और हम बुद्धि, मन, अहंकार इन सबसे अलग है। हमारी एक ही पहचान है, वो ये है कि हम भगवान के दास हैं, वी आर द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दैट्स अवर आइडेंटिटी। बस यही है, इतना सोच के जो भी क्रेडिट है वो मालिक को दे देना चाहिए, मालिक हमारे कृष्ण हैं, उनको अपना क्रेडिट दे देना चाहिए। तो इस प्रकार ये कहते हुए कि कर्म योगी कर्म करके भी करता नहीं है, कृष्ण समझाते हैं कि ऐसा योगी भगवान के लिए कर्म करता है। कैसे कर्म करता है वो यहां पे बताया गया। तो कैसे करता है, ब्रह्मान्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोतिया लिप्तेन सपापेन पद्म पत्र व्यांभसा। आपने देखा होगा कमल का पत्ता होता है, वो कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी भीगता नहीं है। ऐसे ही जो अनासक्त भाव से कर्म करता है वो कर्म तो करता है लेकिन उस कर्म का फल उसको भोगना नहीं पड़ता है, ये उसका व्याख्या है। तो हमें क्या करना है, पदार्थ को भोग दृष्टि से नहीं देखना है, पदार्थों को भगवान की सेवा में समर्पित करना है। पहली बार जब मैं इस्कॉन मंदिर गया, इस्कॉन वृंदावन गया, तो वहां पर मैंने देखा कुछ साधु लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। मैंने कहा अरे साधु और कंप्यूटर, मैंने साधुओं को भी देखा है कंप्यूटर को भी देखा है लेकिन साधु कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं ऐसा तो पहली बार देखा। तो मैंने पता किया, तो मैंने वहां पता चला कि वो लोग मूवी नहीं खेलते, वो वीडियो गेम नहीं खेल रहे हैं, वो उस कंप्यूटर को भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगा रहे हैं। तो मुझे पता चला वास्तव में युक्त वैराग्य क्या होता है। तो जब इस तरीके से हम काम करते हैं तो कर्म बंधन से ऊपर निकल जाते हैं। तो दो तरीके की भावना होती है देखने की, एक आसुरिक तरीका होता है, एक देवताओं का तरीका होता है। जैसे कोई ब्राह्मण है वो गाय को देखता है, बोलता है अरे वाह गाय माता है, प्रणाम करता है, गाय हमको दूध देगी उससे मैं घी बनाऊंगा और घी से भगवान की भक्ति करूंगा, उनको यज्ञ करूंगा उनके लिए। अभी एक कसाई होता है, वो क्या देखता है, गाय को देखता है, बोलता है इसको और गाय को घास खिलाओ और थोड़ा मांस बढ़ जाएगा तब मेरे पास लेके आना, तब मैं इसको काट दूंगा और इसको बेच दूंगा। इस तरीके से वो जो है बोलता है। जब ही रावण ने सीता को देखा और हनुमान जी ने सीता को देखा, रावण सीता को देख रहा है भोग की दृष्टि से कि मुझे भोग करना है, और हनुमान जी सीता जी को कैसे देख रहे हैं, माता की दृष्टि से। हाँ वो कृष्ण वो भगवान राम के साथ कनेक्शन जोड़ रहे हैं माता सीता का, और वो उनको उनकी सेवा में लगाना चाहते हैं, सीता को राम के पास लाना चाहते हैं, और रावण जो है वो सीता को भोगना चाहता है, राम से दूर रखना चाहता है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको हनुमान जी की तरह रहना चाहिए। हाँ जो कुछ भी संसार में है वो भगवान की शक्ति है, और भगवान की मेन शक्ति कौन है, सीता मैया। तो सीता मैया का ही एक्सपेंशन सब कुछ है, इसलिए हमें सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस ज्ञान के साथ जो पंडित होता है वो समदर्शिना हो जाता है, सबको एक नजर से देखता है। हालांकि वो वर्क करता है काम करता है लेकिन उसको कोई भी बंधन प्राप्त नहीं होता, वो जितेंद्रिया हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया, वो मन को जीत लेता है, उसको भगवान की सेवा में लगा देता है मन को, इसलिए वो पद्म पत्र की तरह हो जाता है, कार्य करते हुए भी फंसता नहीं है। तो हमें हमारी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में मिक्स कर देना चाहिए। तो एक बार दो लड़के थे, एक जमींदार था, उसका बहुत बड़ा जो है चार दीवारी बनी हुई थी, रेलिंग बनी हुई थी, और वहां पे कई सारे गार्ड लोग घूमते रहते थे और बोलते थे इधर कोई कुछ लिखना नहीं चाहिए, इस दीवार पे कोई कुछ लिखना नहीं चाहिए। तो ये दोनों लड़कों ने कहा, एक लड़के ने दूसरे बोला मैं कुछ लिखूंगा देखना, जमींदार जो है मुझे कष्ट नहीं देगा, मुझे पनिशमेंट नहीं देगा, दंड नहीं देगा। तो लड़के ने कहा अच्छा ठीक है दिखाओ। तो उस लड़के ने कुछ लिखा, जब लिखा तो तुरंत वॉचमैन दौड़ गया, बोला अरे मैंने तुमको बोला था यहाँ कुछ लिखना नहीं है, तुमने क्या लिख दिया। तो वॉचमैन ने जब देखा लिखा हुआ है कुछ, तो उसने जमींदार को बुलाया, जमींदार आया तो जमींदार ने उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए उस लड़के को। अब ये दूसरा लड़का उससे बोला तुमको इतने सारे गिफ्ट कैसे मिले। तो उसने बोला कि मैंने लिख दिया था इस दीवार पे कुछ लिखना नहीं है। अभी वॉचमैन को इधर घूमने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैसेज जो है उससे पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है। यानी अपनी इच्छाओं को लिखने की इच्छा थी, उसको जमींदार की इच्छा में उसने मिला दिया। ठीक वैसे हमें भी भगवान की इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को मर्ज कर देना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान 12वें श्लोक में बोलते हैं कि जो कर्म योगी होता है वो शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वो शुद्धिकरण चाहता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरेन्द्रियरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, अपने शुद्धिकरण के लिए कार्य करता है। अब भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि कैसे जीवात्मा कर्म करते हुए भी अकर्ता रहता है। यह राजा गय का जो है उदाहरण यहां पर दिया हुआ है, आप लोगों में से कोई पढ़िए इसको। हाँ पढ़िए कमलेशपुर, यस कमलेशपुर पढ़िए।
हाँ प्रभु जी, राजा गय ने अपनी प्रजा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान किया जिससे उनकी संपत्ति को किसी प्रकार क्षति ना पहुंचे। उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि प्रजा को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो और कभी कभी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए दान भी दिया करते थे। कभी कभी वे सभाएं बुलाते थे और उनको तुष्टि प्रदान करते थे, उन्हें उच्च कोटि के नागरिक बनने की शिक्षा देते थे। हाँ, तो साथ ही साथ राजा जो थे गए वो गृहस्थ थे और सारे नियमों का कड़ाई से पालन करते थे, यज्ञ करते थे, भगवान के भक्त थे और सभी प्रकार से पूर्ण होने पर भी वे न तो गर्व करते थे न ही राज्य करने के लिए लायक थे। ये भी नहीं कहते थे मैं इतना अच्छा राज्य कर रहा हूँ, और ना ही वो राज्य करना भी चाहते थे कि अगर कोई और करना चाहे तो वो करे आके, उनको ऐसा अटैचमेंट नहीं था। ये समझना चाहिए। तो अभी लेसन टू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है थ्री डूअर्स। तीन तरीके के डूअर होते हैं, कार्य करने वाले तीन तरीके के होते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही प्रताप रुद्र करके एक राजा हुए, वो भगवान जगन्नाथ जी का रथ जब निकलता था तो उसके सामने झाड़ू लगाते थे। वो बताते थे जगन्नाथ जी जो है वास्तविक राजा है, मैं तो उनका दास हूं, मैं उनके लिए झाड़ू लगा रहा हूं। तो इस प्रकार हम निराशक्त कैसे बन सकते हैं, हमें समझना पड़ेगा। तीन चीजें हैं, जीव, परमात्मा और प्रकृति। अभी ये समझने का प्रयास कीजिएगा, तीन, आत्मा, प्रकृति और भगवान। ओके, जैसे एक क्रिकेटर है, हाँ, वो प्रैक्टिस कर रहा है कुछ, कल उसका मैच है, लेकिन उसका अगर पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो एक दिन में सही नहीं हो सकता। तो इससे पता चलता है कि वो चाहता है कल के मैच में खेलना, लेकिन वो अभी नहीं खेल सकता क्योंकि कंट्रोल में उसके नहीं है ये चीज। एक बार की बात है, हमारा एक ड्राइवर था, तो हमने उससे कहा कि हमें एक प्रोग्राम में चलना है, और उसने कहा ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करेंगे, लेकिन हमें कुछ लेट हो गया। लेट होने पर वो ड्राइवर बहुत गुस्सा था, और बहुत, मैं जब आया तो मेरे से बात भी नहीं कर रहा, इतना गुस्सा। मैंने कहा भाई मंदिर लेके चलो, तो इतनी तेज गाड़ी चला रहा कि मुझे डर लगने लगा कहीं ठोक ना दे किसी को। इतने में क्या हुआ, वो लेफ्ट लेना था उसको, लेकिन वो लेफ्ट गाड़ी ले ही नहीं पाया। वो घुमा रहा है स्टीयरिंग, लेकिन गाड़ी जो है घूम ही नहीं रही, लेफ्ट गाड़ी सीधी जा रही है। तो अब ये ड्राइवर कहने डरने लगा, वो भी, हाँ वो भी कहने लगा, अरे क्या हो गया, क्या हो गया करके। हालांकि ब्रेक दबाया तो गाड़ी रुक गई, हाँ नहीं तो एक्सीडेंट हो गया होता पक्का 100%। रात का टाइम था, तो अभी वो कंट्रोल में हमारे सब कुछ नहीं है। भले ही हमको इतनी अच्छी व्हीकल मिला हुआ है, लगता है सब कुछ कंट्रोल में, लेकिन कभी भी कंट्रोल छूट सकता है। तो ये तीन चीजें जो हैं, आत्मा, प्रकृति और भगवान, उनकी, उनके बारे में हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। मैं समझने का और प्रयास करता हूं। तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो शरीर में, हर तरफ शरीर में दर्द होता है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि पुरानी गाड़ी हो जाती, शरीर भी पुराना हो जाता है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मैं आपको बहुत पैसा दूंगा, आप केवल मेरी उम्र 3 साल और बढ़ा दो। डॉक्टर बोला 3 साल छोड़ो, तुम 4 घंटे में मरने वाले हो। और वो अगले ही घंटे मर गया। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम यहां से, इस संसार से कभी भी जा सकते हैं। एक बार पतझड़ आई बहुत तेज से, हाँ उस समय पेड़ के सारे पत्ते गिर गए, और एक चिड़िया जो थी अपने बच्चों के साथ वहां पर रह रही थी, तो उसी दिन वो शाम को एक किसान जो है उस पेड़ को काटने के लिए आ गया, तो चिड़िया को उड़ जाना पड़ा। वैसे ही जब ये शरीर हमारा बूढ़ा हो जाएगा तो आत्मा भी क्या करेगी, शरीर को छोड़ देगी। अब देखिए, आत्मा जो है वो इच्छा करती है किसी भी कार्य को करने की, कर्म करने की इच्छा कौन करता है, आत्मा। सैंक्शन कौन करता है, अनुमति कौन प्रदान करता है, भगवान। और कर्ता कौन है, प्रकृति। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा, प्रकृति करने वाली है, प्रारंभ करने वाला कौन है, इच्छा करने वाला कौन है, आत्मा। और जो है सैंक्शन करने वाला कौन है, भगवान। एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। जैसे मान लीजिए दो आदमी खड़े हैं, एक आदमी ने तलवार से दूसरे आदमी को मार दिया। अब बताइए किसने मारा, आत्मा ने मारा या तलवार ने मारा
یا بھگوان نے مارا. تو اس یہاں پہ جو سیکھ آپ کو دی ہوئی ہے اسے سمجھیے. مارنے کی اچھا کس نے کیا؟ آتما نے. ہاں مار دینا چاہیے. بھگوان کے پاس پہنچا, مار دینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ بھگوان نے کہا دیکھو مار دو گے تو تم کو پاپ لگے گا, تم کشٹ بھوگو گے, اور اگر نہیں مارو گے تو تم بچ جاؤ گے. تو اس نے کہا نہیں مجھے مارنا ہے. آتما نے بولا مجھے مارنا ہے. تو بھگوان نے کہا ٹھیک ہے بھگوان ہم کو زیادہ ٹھیک ہے کرو جو کرنا ہے. اور پھر مارا کس کے دوارا؟ پرکرتی کے دوارا, یعنی کہ تلوار کے دوارا مارا. تو ڈیزائر کس کی تھی؟ آتما کی. سینکشن کس نے کیا؟ بھگوان نے. اور کرنے والا کون ہے؟ پرکرتی. یہ تینوں چیزیں ہمیں دھیان دینا چاہیے. تو مایا دیوی جو ہے وہ جیووں کی اچھاؤں کو پوری کرتی ہیں. دیکھیے یہ ٹرائنگل ہے, دکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو ترکوڑ تربوج دکھ رہے ہیں تربوج. جیو اچھا کرتا ہے, جیو کی یوگیتا انوسار پرماتما اچھا پورتی کی انمتی دیتے ہیں. اس کی یوگیتا کے انوسار اگر وہ یوگی ہے تو دیں گے. اور پرماتما سے انمتی ملنے پر بھوتک پرکرتی تینوں گنوں کے دوارا جیو کی اچھا کو پورتی کرتی ہے. کرتا کون ہے بتائیے؟ کون ہے کرتا؟ ہو از دا ڈوئر؟ پرکرتی نہیں ہے اس سنسار میں, پرکرتی ہے. ہاں سنیے سنیے, اس سنسار میں اور بھگوت دھام میں, بھگوت دھام میں کرنے والے ہیں بھگوان, اور اس بھوتک دھام میں بھوتک سنسار میں کرنے والی ہے پرکرتی. جیو جو ہے اجیان میں پھنسا ہوا ہے, اور جیو کیا بولتا ہے؟ میں کر رہا ہوں, آئی ایم دا ڈوئر, آئی ایم دا ڈوئر, آئی ایم دا ڈوئر. لیکن کرنے والا کون ہے؟ آدھیاتمک جگت میں کرنے والے ہیں کرشن, اور بھوتک جگت میں کون ہے؟ پرکرتی. پرکرتی ہم سے کرواتی ہے. دیکھیے آپ اس فوٹو میں دیکھیں گے, اس فوٹو میں بھگوان کرشن کے انترگت یہ پرکرتی کے تین گن ہیں, ستو رج اور تم. آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے؟ ہاں. اس کے انترگت دیکھیے دو لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں, وہ پرکرتی ان سے کروا رہی ہے. تو بھوتک آدھیاتمک جگت میں بھگوان ڈانس کراتے ہیں ہم سے, ہم لوگ ڈانس کرتے ہیں گوپیوں کے ساتھ بھگوان ڈانس کرتے ہیں, اور بھوتک سنسار میں مایا دیوی کے انسار ہم لوگ ڈانس کرتے ہیں. جیسے ایک بندر ہے, وہ بندر جنگل میں رہتا ہے, جنگل میں رہ کے وہ بندر آرام سے ادھر ادھر گھومتا ہے, بہت اچھے سے گھومتا ہے, کھیلتا ہے, کودتا ہے. ایسے ہی آدھیاتمک جگت میں ہم لوگوں کو بہت فریڈم ہے, بہت سوتنترتا ہے. لیکن وہی منکی وہی بندر اگر وہ ایک بوتل جس کے اندر کچھ ڈرائی فروٹ رکھے ہوئے ہیں جو کہ اس کو پکڑنے کے لیے بنائی گئی ہے, اس بوتل میں وہ ہاتھ ڈال دیتا ہے, ہاتھ ڈال کے وہ وہاں سے کچھ ڈرائی فروٹ کو نکالنے کا پریاس کرتا ہے, اور ہاتھ میں وہ ڈرائی فروٹ, وہ بوتل بھی اتنی بھاری ہوتی ہے کہ وہ اس کو لے کے نہیں جا سکتا, اور جو شکاری آتا ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے. ابھی یہ بندر کیا کر سکتا تھا؟ ان پھلوں کو چھوڑ سکتا تھا اور بھاگ سکتا تھا, لیکن ان سے آسکت ہو جانے کے کارن اس کو وہ شکاری جو ہے پکڑ لیتا ہے, اور پھر گلے میں اس کے رسی باندھ دیتا ہے. پہلے وہ اپنے آپ سے کودتا تھا, اپنی اچھا سے کرتا تھا, لیکن ابھی یہ جو شکاری ہے مداری ہے, مداری جو ہے اس کو بولتا ہے ناچ, تو ناچنا شروع کر دیتا ہے. تو ویسے ہی ہم لوگ بھی جنگل میں رہتے ہیں, رہتے تھے بھگوان کے دھام میں. وہ جنگل کون سا ہے؟ ورنداون. بہت فریڈم تھی وہاں پہ, بہت سوتنترتا تھی. کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگ چلتے نہیں ہیں, ڈانس کرتے ہیں, بولتے نہیں ہیں, گاتے ہیں. وہاں کا جو پانی ہے وہ ہنی کی طرح ہے, شہد کی طرح ہے. تو اس جگہ کو ہم نے چھوڑ دیا, کہاں آ گئے؟ اس سنسار میں پھنس گیا. تو بھگوان یہ چیز سمجھنا چاہیے ہم کو کہ بھگوان کی اچھا کے بنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جب جیو کچھ اچھا کرتا ہے, مایا دیوی بھگوان کی انمتی کے دوارا اس کو کاریہ کرنے کے لیے وہ اچھا پورتی کرتی ہے. یہ لیفٹ سائڈ میں جو ہے ان کا نام ہے محمد علی. محمد علی نے گھوشت کر دیا تھا کہ میں گریٹسٹ ہوں, میرے سے مہان کوئی نہیں ہے. وہ کبھی بھی کوئی بھی بائٹ ہارے ہی نہیں تھے. میں سب سے مہان ہوں, انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا. لیکن ان کو ایک روگ نے پکڑا, پرکنسن نام کے روگ نے پکڑا, اور اس سمے وہ کافی کی کپ بھی نہیں اٹھا پاتے تھے, ایسی استھتی ہو گئی. تو بعد میں ان سے ایک پترکار نے پوچھا, آپ تو بولتے تھے یو آر دا گریٹسٹ, کیا ہوا؟ تو انہوں نے بولا یس آئی ایم دا گریٹسٹ پھول, میں سب سے بڑا مورکھ ہوں, سب سے مہان مورکھ ہوں میں, جو ایسا سوچتا تھا. گریٹسٹ تو کیول ایک ہی ویکتی ہو سکتا ہے, وہ ہے بھگوان. تو ایسے ہی ہمارا شریر جو ہے دھیرے دھیرے کمزور کمزور ہوتا جاتا ہے. تو اس سنسار میں کام کرودھ اور لوبھ کے چکر میں ہم لوگوں کو بہت کشٹوں کو جھیلنا پڑتا ہے. क्या होता है जब हम सोचते हैं कि मैं किसी भी वस्तु को और व्यक्ति को नियंत्रित करना चाहूं कर सकता हूं, मैं जो चाहूं वो प्राप्त कर सकता हूं, मैं अपने शत्रुओं को हरा दूंगा, मैं लगातार 18 घंटे कार्य करके इसको पूरा कर दूंगा, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, पर कभी भी हम इनके द्वारा शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब हम किसी कार्य को करते हुए अनासक्त रहते हैं तो वास्तविक शांति हमको प्राप्त होती है। इंडिया टुडे पिछले 25 सालों में युवाओं की आत्महत्या का दर 3 गुना हो गया है, आत्महत्या कर लेते हैं युवा लोग, और लोगों का तो छोड़िए। तो ये तीसरा लेसन स्टेप में इक्वल विजन, कैसे समदृष्टि रखना चाहिए, वो भगवान जो है आगे बताते हैं। तो सूर्य निकलता है, सूर्य डूबता है, वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। जब भगवान सैंक्शन करेंगे तभी हमको मिलेगा, इस तरीके से भाव रखना चाहिए। जो इस तरीके से भाव रखता है वो कलमशों से मुक्त हो जाता है। परम तत्व पर ध्यान जो है वो मुक्ति की ओर लेके जाता है। तद बुद्धेस्त तदात्मानस्त तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कलमशः। अगर कोई व्यक्ति भगवान पर ध्यान लगाता है तो वो मुक्ति की ओर बढ़ जाता है। तो हम लोग भगवान को तो देख नहीं पाते और इस कारण हम उनकी आवाज भी नहीं सुन पाते। जितना हम शुद्ध होते हैं परमात्मा हमको उतने हमको सुनाई देते हैं। परमात्मा हमारे हृदय के अंदर ही है। हम जो भी ज्ञान जो भी गलत करने चलते हैं तो अंदर से आवाज आती है, लेकिन हम जितना शुद्ध होंगे उतनी तेज आवाज आएगी, और जितना अशुद्ध होंगे हम उनकी आवाज को नहीं सुन पाएंगे। अगर हमको परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं देती है तो हमको गुरु की आवाज सुनने का प्रयास करना चाहिए, गुरु से सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो आत्मसिद्ध व्यक्ति है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय से संपन्न होता है वो ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, वो चांडाल हो, वो सबको एक नजरी से देखता है। तो ये स्तर जो है बना लेना चाहिए। तो 20-21 श्लोक में अर्जुन पूछता है कि एक आत्मसिद्ध व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, तो भगवान आंसर देते हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एव ते आद्यंतवंता कौन ते या न तेषु रमते बुधा। बहुत सुंदर श्लोक है ये। इस संसार में जो भी इंद्रिय तृप्ति की वस्तु है, जो भी सुख हमको लगता है, वो क्या है, संस्पर्शजा भोगा, वो भोग जो है स्पर्श से लगता है, और वो क्या है, दुख योनय, वो दुखों की योनि है, यानी दुखों की शुरुआत वहां से होती है, और क्या होता है, आद्यंतवंता कौन थे, वो शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं। जो हमको सुख लगता है इस संसार में वो कैसा है, शुरू होता है और खत्म भी हो जाता है, वो कंटिन्यू नहीं रहता। इसलिए न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसमें वो रमण नहीं करते हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि इंद्रिय भोग जो है वो दुख देता है, फिर भी हमारे अंदर इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, अगले श्लोक से संबंध भगवान क्या बोलते हैं, टॉलरेट करो। शक्नोति है वह शोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधद्भवम वेगम सयुक्ता सा सुखी न रहा। इनको जो इन वेगों को सहन कर लेता है सा सुखी न रहा, वही व्यक्ति जो है सुखी हो सकता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियों के वेगों को कंट्रोल करो, नहीं तो क्या होगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। कोई मांस खाता है तो उसको शेर बनना पड़ेगा, कोई बहुत सोता है उसको भालू बनना पड़ेगा, कोई कपड़े बहुत कम पहनता है उसको उसको जो है पेड़ बनना पड़ेगा। एक बार प्रभुपाद जी ने देखा कि कुछ लड़के थे वो 6-7 घंटे से पानी के अंदर ही खेल रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा लग रहा है वो लोग मछली बनने का प्रयास कर रहे हैं, अगला जन्म उनको मछली का प्राप्त होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इनको वेगों को सहन करो, उससे क्या होगा, आंतरिक प्रसन्नता मिलेगी और साथ साथ में मुक्ति प्राप्त होने की संभावना है। तो इन वेगों को सहन करो, सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ। यो अंता सुखो अंतरारम अस्तनाथांत ज्योतिरेव यह सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। उसको ब्रह्मभूत स्तर पर पहुंच जाता है, अंदर से उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है। बाहर की चीजों में प्रसन्नता नहीं ढूंढता है, अंदर ही उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसके आत्माराम हो जाता है वो। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कलमसा छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। ये भी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में, कहते हैं कि जो लोग द्वैत से परे हैं, सुख दुख
लाभ हानि इन सबसे परे हैं, उनके जिनके मन आत्म साक्षात्कार में लगे हुए हैं। हाँ, यतात्मानं सर्वभूत हितेरता, जो समस्त जीवों के कल्याण में लगे हुए हैं और जो पापों से बचे हुए हैं, क्षीण कलमसा, जो पापों से रहित हैं वो लोग मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। इस श्लोक में भगवान बताते हैं क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से जो रहित हैं वो आत्मसंयमी हैं और संसिद्धि के लिए, मुक्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और कुछ ही समय में उनकी मुक्ति जो है सुनिश्चित है, वो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार अभी तक भगवान ने बताया कि किस प्रकार से परम तत्व के पूर्ण ज्ञान में कोई कार्य करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 27-28 नंबर श्लोक में भगवान बताएंगे कि अष्टांग योग द्वारा मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तो पहले अभी हम सोचें, आजकल अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, इतने सारे आम आ रहे हैं, इतने सारे तरबूज आ रहे हैं, वाटरमेलन आ रहे हैं, तो ये पेड़ जो है कितने सारे, अभी समझिए लाखों करोड़ों जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं और पेड़ जो है वो इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? वो आपके लिए कर रहे हैं? नहीं, वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जो पेड़ कृष्ण के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाटरमेलन हो या आम हो, उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान को अर्पित करने के बाद उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे क्या होगा, वो जो आम का पेड़ है ना, वो भी अगले जीवन में मनुष्य का जीवन प्राप्त करेगा, मनुष्य का जीवन उसको मिलेगा। और अगर आप क्या करते हैं, आप उसको खा लेते हैं बिना भगवान को भोग लगाए, तो आप क्या खा रहे हैं? आप पाप खा रहे हैं। और वो पेड़ भी सोचेगा, अरे मूर्ख, मुझे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, मैं भगवान के लिए आया था, तूने अपनी सेवा में लगा लिया, तो उसको पाप बोला जाता है। सोना चांदी कपड़े जो कुछ भी है भगवान को अर्पित करना चाहिए, सब कुछ भगवान को अर्पित करके ही यूज करना चाहिए। हाँ, अनासक्त भाव से यूज करना चाहिए। इस संसार में बहुत सारे लोग हुए, महान महान लोग हुए, जैसे सिकंदर हुआ, ये ब्रिटिश हुए ना, पूरे विश्व पर राज किया, लेकिन अभी सब चले गए। भगवान कृष्ण वास्तव में राजा हैं। वो प्रस्तुत होता है इस लास्ट श्लोक से। भगवान 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस श्लोक को शांति सूत्र बोला जाता है। इस श्लोक को अगर कोई जान लेता है तो शांति प्राप्त कर सकता है। तीन चीजें जानने को बोलते हैं। पहला, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का भोक्ता, सारी तपस्याओं का भोक्ता मैं हूं। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया तरबूज और आम का, वो उसके सबके भोक्ता, चाहे सोना हो, चांदी हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, सारी भूमि हो, सबका भोक्ता कौन है? भगवान। और सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं उनके जो कंट्रोलर हैं, उन सब के कंट्रोलरों के भी कंट्रोलर कौन है? भगवान है। सबको कंट्रोल करने वाले भगवान है। और तीसरा, सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सबका भला चाहने वाले हैं, सर्वभूतानाम सारे जीवों का भला चाहने वाले हैं। इज द वेलविशर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। जो इस बात को जान लेता है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, वो शांति को प्राप्त कर लेता। तो कृष्ण जो है वो एकमात्र भगवान है। तो अभी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। भगवान ने बोला 5वें अध्याय के 1-12 श्लोकों में, इस संसार में रहो, अनासक्त रहकर कार्य करो। 13-16 में हमने जाना तीन कर्ता होते हैं, कौन कौन? जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति। फिर भगवान ने 17-26 नंबर श्लोक में बोला, समदृष्टि रहना चाहिए, समदृष्टि पूर्वक इस संसार में रहना चाहिए। और आखिरी में 29 नंबर श्लोक में भगवान ने बोला कि हमको शांति कैसे प्राप्त होगी, वो यहाँ पे बताया गया। अभी हम इस श्लोक को 5वें नंबर का 29 नंबर श्लोक को अगली क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो अभी अगर हम जो है अभी, यानी कि अगले गुरुवार को जो क्लास होगी उसमें हम 6ठा चैप्टर डिस्कस करेंगे, 6th चैप्टर डिस्कस करेंगे, और तब हम इस श्लोक को थोड़ा और जो है प्रयास करेंगे समझने का। तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो आप लोगों में, हमने जो आज टॉपिक कवर किया, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।